एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, ज्ञान गोष्ठी के इस नए अंक में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसने कहना चाहिए कि राजनीतिक दर्शन की दुनिया में काफी हलचल मचाई थी और आज भी सोचने पर मजबूर करती है।
बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट नोज़िक की क्लासिक कृति अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया की। ये किताब उदारतावाद यानी लिबर्टेरियनिज्म और एक सीमित न्यूनतम सरकार के विचार का एक जबरदस्त दार्शनिक बचाव करती है
और इसकी प्रासंगिकता तो आज भी उतनी है, शायद पहले से ज्यादा भी। सरकार का साइज क्या हो, टैक्स कितना सही है, हमारी अपनी आजादी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहाँ तक, और ये जो सामाजिक न्याय की बात होती है उसका मतलब क्या है, ये सारे सवाल तो आज हमारे समाज, हमारी राजनीति, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं, है ना?
सही कहा। और नोज़िक की किताब हमें इन सवालों पर एक बिल्कुल अलग, कभी कभी तो चौंकाने वाला नजरिया देती है। तो चलिए इस बौद्धिक सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि नोज़िक हमें क्या सोचने पर मजबूर करते हैं। पहले लेखक के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। रॉबर्ट नोज़िक, जिनका समय 1938 से 2002 तक रहा, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे और 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली अमेरिकी दार्शनिकों में उनकी गिनती होती है।
हाँ, और दिलचस्प बात यह कि वो कोई पारंपरिक राजनीतिक एक्टिविस्ट टाइप नहीं थे, वो एक गहरे अकादमिक दार्शनिक थे। उनकी पहचान उनकी पेनी तर्क शक्ति, उनकी रचनात्मकता और कभी कभी थोड़ी शरारती सी लगने वाली तर्क शैली से थी। वो मुश्किल विचारों को समझाने के लिए बड़े अनोखे विचार प्रयोग या थॉट एक्सपेरिमेंट्स गढ़ने में माहिर थे।
हाँ बिल्कुल, और उनकी ये किताब एक और वजह से बहुत खास है। इसे अक्सर उनके ही हार्वर्ड के साथी जॉन रॉल्स, उनकी मशहूर किताब अ थियोरी ऑफ जस्टिस के सीधे जवाब के तौर पर देखा जाता है। आपको याद होगा, रॉल्स ने एक कल्याणकारी, ज्यादा दखल देने वाले राज्य का समर्थन किया था।
हाँ हाँ, जो समाज में बराबरी लाने के लिए संसाधनों का पुनर्वितरण करे, है ना?
बिल्कुल, नोज़िक ने इसी विचार को सीधी चुनौती दी। उन्होंने उदारतावाद को, जिसे कई लोग सिर्फ एक आर्थिक सिद्धांत समझते थे, उसे एक मजबूत नैतिक और दार्शनिक आधार दिया।
और उनका तरीका भी अलग था। वो एकदम बुनियादी सिद्धांतों से शुरू करते थे और फिर कदम दर कदम लॉजिक के साथ अपनी बात बनाते थे। इससे उनके तर्क बहुत शक्तिशाली लगते हैं, भले ही आप अंत में उनसे सहमत हो या ना हो।
तो अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, इसका मूल विचार क्या है? किताब असल में ये साबित करने की कोशिश है कि नैतिक रूप से अगर देखा जाए तो सिर्फ एक न्यूनतम राज्य यानी मिनिमल स्टेट ही सही ठहराया जा सकता है। इसे कई बार नाइट वॉचमैन स्टेट भी कहते हैं, रात के पहरेदार जैसा राज्य।
रात का पहरेदार?
हाँ, मतलब एक ऐसा राज्य जिसका काम बहुत ही सीमित हो। क्या काम? बस लोगों को हिंसा, चोरी, धोखाधड़ी से बचाना और उनके जो आपसी समझौते या कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन्हें लागू करवाना। दैट्स इट,
बस इतना ही।
हाँ, नोज़िक का तर्क है कि इससे ज्यादा कुछ भी करने वाला राज्य, खासकर वो जो टैक्स लगाकर समाज को बेहतर बनाने या कह लीजिए बराबरी लाने की कोशिश करता है, वो अन्यायपूर्ण है।
अन्यायपूर्ण क्यों?
क्योंकि नोज़िक के लिए व्यक्ति के अधिकार, इंडिविजुअल राइट्स, वो सर्वोपरि हैं, परम हैं, और एक ज्यादा विस्तृत राज्य जो ज्यादा काम करता है वो अनिवार्य रूप से इन अधिकारों का उल्लंघन करता है, खासकर संपत्ति के अधिकार का और अपनी मर्जी से जीने के अधिकार का।
अच्छा, तो किताब इसे साबित कैसे करती है? आपने कहा तीन हिस्से हैं।
हाँ, मोटे तौर पे तीन हिस्से हैं। एक लॉजिकल फ्लो है। पहला हिस्सा दिखाता है कि अराजकता, मतलब जहां कोई सरकार नहीं है, उस स्थिति से एक न्यूनतम राज्य बिना किसी के अधिकार छीने स्वाभाविक रूप से कैसे उभर सकता है। ये उन लोगों का जवाब है जो कहते हैं कि कोई भी राज्य नैतिक हो ही नहीं सकता, एनार्किस्ट जो होते हैं।
ठीक है, ये तो अराजकतावादियों का जवाब हो गया। दूसरा हिस्सा?
दूसरा हिस्सा तर्क देता है कि ये जो न्यूनतम राज्य उभरा है, ये न सिर्फ जायज है बल्कि यही सबसे बड़ा राज्य है जिसे जायज ठहराया जा सकता है। इससे आगे बढ़कर राज्य का कोई भी विस्तार, जैसे कि टैक्स लगाकर अमीरों से पैसा लेकर गरीबों में बांटना, वो व्यक्तियों की स्वतंत्रता छीनता है। ये सीधा जॉन रॉल्स जैसे विचारकों पर हमला है।
और तीसरा हिस्सा, यूटोपिया वाला?
हाँ, तीसरा हिस्सा थोड़ा उभरा सेंग ने, वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये न्यूनतम राज्य कोई सूखी, बेरंग, बोरिंग सी चीज नहीं है, बल्कि असल में ये यूटोपिया के लिए एक ढांचा है, मतलब एक ऐसा मंच जहां अलग अलग तरह के लोग अपनी पसंद के समुदाय बनाकर अपने अपने मूल्यों के हिसाब से जी सकते हैं।
दिलचस्प। चलिए इन हिस्सों में थोड़ा और अंदर चलते हैं। भाग वन, अराजकता से राज्य तक। आपने कहा प्राकृतिक अवस्था से शुरुआत होती है।
हाँ, जॉन लॉक की तरह। सोचिए, कोई सरकार नहीं है, पर लोगों के पास जन्म से कुछ अधिकार हैं, जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति। लेकिन दिक्कत क्या है? अगर कोई आपके अधिकार छीनता है तो न्याय कौन करेगा?
हाँ, ये तो समस्या है। आप खुद करेंगे तो बदला लेंगे, फिर वो बदला लेगा, झगड़ा बढ़ता जाएगा।
बिल्कुल। तो लोग समझदारी दिखाते हैं और खुद को बचाने के लिए छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते हैं। आपसी सुरक्षा संघ,
म्यूचुअल प्रोटेक्शन एसोसिएशंस।
ठीक है,
जी।
लोग ग्रुप बना रहे हैं सुरक्षा के लिए। फिर धीरे धीरे, जैसे बाजार में होता है, कॉम्पिटिशन होता है, कुछ एजेंसियां ज्यादा कुशल होती हैं, ज्यादा शक्तिशाली, तो एक सबसे प्रभावी सुरक्षा एजेंसी उभर कर आती है, नॉजिक। उसे कहते हैं प्रमुख सुरक्षा संघ या डोमिनेंट प्रोटेक्टिव एसोसिएशन, DPA। ये लगभग राज्य जैसा है, पर अभी पूरी तरह नहीं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ अपने ग्राहकों की रक्षा करता है।
अच्छा, जो पैसे देते हैं उनकी रक्षा, पर जो सदस्य नहीं है उनका क्या?
यही नॉजिक एक बहुत ही चालाकी भरा तर्क देते हैं। ये DPA जब अपने इलाके में बल प्रयोग का एकाधिकार, मतलब मोनोपोली जमा लेता है, इसे वो कहते हैं अल्ट्रा मिनिमल स्टेट। तो वो उन लोगों को अपना न्याय खुद करने से रोक सकता है जो सदस्य नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके तरीके जोखिम भरे हो सकते हैं, उनसे दूसरों को खतरा हो सकता है।
ये तो उन स्वतंत्र लोगों के साथ नाइंसाफी हुई ना, उन्हें अपना बचाव करने से रोक दिया।
हाँ बिल्कुल। नोजिक कहते हैं कि ऐसा करके DPA उन स्वतंत्र लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, और इस नुकसान की भरपाई के लिए कॉम्पनसेशन के तौर पर DPA को उन्हें भी सुरक्षा देनी होगी, भले ही वो ग्राहक ना हो।
अच्छा, और इसका पैसा कहाँ से आएगा?
वो अपने ग्राहकों से लिए गए शुल्क से ही देगा। और जिस पल ये DPA सभी की सुरक्षा करने लगता है, ग्राहक हो या ना हो, उसी पल ये एक सच्चा न्यूनतम राज्य बन जाता है।
कमाल है। और ये सब हुआ कैसे?
एक अदृश्य हाथ, इनविजिबल हैंड की प्रक्रिया से। मतलब किसी ने प्लान नहीं किया था कि राज्य बनाना है। ये सब लोगों के अपने हित साधने और आपसी समझौतों से अपने आप हो गया। और सबसे जरूरी बात, नोजिक के अनुसार इस पूरी प्रक्रिया में किसी के अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ।
वाह, ये तर्क तो वाकई सोचने वाला है। तो नोजिक ने दिखा दिया कि अराजकता से एक न्यूनतम राज्य बन सकता है और वो नैतिक भी है। लेकिन अब बड़ा सवाल आता है, भाग दो, क्या न्यूनतम राज्य से ज्यादा कुछ जायज है? और यहीं पर वो वितरण न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और जॉन रॉल्स पर निशाना साधते हैं ना?
बिल्कुल।
ये किताब का कह सकते हैं दिल है।
नोजिक कहते हैं कि धन का उचित या न्यायपूर्ण वितरण कैसा हो, इस पर ज्यादातर सिद्धांत, जैसे रॉल्स का सिद्धांत, वो गलत सवाल पूछते हैं। वो अपना हकदारी सिद्धांत पेश करते हैं।
हकदारी सिद्धांत, ये क्या है?
ये कहता है कि आपके पास जो संपत्ति है वो न्यायपूर्ण है या नहीं, ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपके पास कितना है, बल्कि इस पर कि वो आपको कैसे मिला। इसके तीन सिद्धांत हैं। पहला, मूल अधिग्रहण में न्याय। क्या वो चीज, मान लीजिए जमीन, शुरू में सही तरीके से हासिल की गई थी जब वो किसी की नहीं थी?
इसमें वो लॉक की शर्त जोड़ते हैं कि दूसरों के लिए भी पर्याप्त बचना चाहिए। ठीक है, पहला अधिग्रहण सही हो। दूसरा,
हस्तांतरण में न्याय। क्या वो चीज आपको किसी ने अपनी मर्जी से दी, जैसे आपने खरीदी, या किसी ने तोहफा दिया, या विरासत में मिली, मतलब जबरदस्ती या धोखाधड़ी से तो नहीं ली गई?
और तीसरा,
अन्याय का सुधार। अगर पहले या दूसरे कदम में कोई अन्याय हुआ था, जैसे चोरी हुई थी या धोखाधड़ी हुई थी, तो क्या उसे ठीक करने का कोई सिद्धांत है?
अच्छा, तो अगर ये तीनों शर्तें पूरी होती हैं,
तो आपके पास जो भी है, चाहे वो बहुत ज्यादा हो या बहुत कम, वो न्यायपूर्ण है। नोजिक के लिए प्रक्रिया, प्रोसेस, वो महत्वपूर्ण है, परिणाम या आउटकम नहीं। इसे वो ऐतिहासिक सिद्धांत कहते हैं। ये उन सिद्धांतों से अलग है जो पैटर्न देखते हैं।
पैटर्न वाले सिद्धांत
मतलब
वो सिद्धांत जो कहते हैं कि समाज में धन एक खास पैटर्न या नमूने में बटा होना चाहिए, जैसे सबको बराबर मिले, समानता, या जिसको ज्यादा जरूरत है उसे ज्यादा मिले, आवश्यकता, या जिसने ज्यादा मेहनत की उसे ज्यादा मिले, योग्यता।
नोजिक कहते हैं कि ये पैटर्न वाले सिद्धांत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दुश्मन हैं।
दुश्मन
कैसे?
यही वो अपना सबसे मशहूर विल चेम्बरलेन तर्क पेश करते हैं। सोचिए जरा, मान लीजिए समाज में धन का आपका पसंदीदा न्यायपूर्ण वितरण D1 लागू है। मान लीजिए सब बराबर है। अब एक बहुत मशहूर बास्केटबॉल स्टार हैं विल चेम्बरलेन, वो खेलने आते हैं।
हाँ।
और उनका कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि हर टिकट बिकने पर 25 सेंट सीधा उनकी जेब में जाएंगे। लाखों लोग उनके फैन हैं, वो खुशी खुशी ये अतिरिक्त 25 सेंट देते हैं सिर्फ विल्ट को खेलते देखने के लिए। ये उनकी मर्जी है।
ठीक है, लोग अपनी मर्जी से दे रहे हैं।
अब सीजन के अंत में क्या होता है, विल्ट चेम्बरलिन के पास बाकी लोगों से लाखों डॉलर ज्यादा जमा हो गए हैं। समाज में जो बराबरी का पैटर्न D1 था वो तो बिगड़ गया, एक नया असमान वितरण D2 बन गया है।
हाँ, अब विल्ट बहुत अमीर हो गए, तो सवाल ये है, क्या ये नया वितरण D2 अन्यायपूर्ण है? नॉज़िक कहते हैं बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि शुरुआती स्थिति D1 न्यायपूर्ण थी और लोगों ने अपनी मर्जी से बिना किसी जबरदस्ती के विल्ट को पैसे दिए, हर कदम वैध था, तो परिणाम D2 भी न्यायपूर्ण होना चाहिए।
तो इससे सबक क्या मिला?
सबक ये है, स्वतंत्रता पैटर्न को बिगाड़ती है, लिबर्टी अपसेट्स पैटर्न्स। अगर आप लोगों को अपनी मर्जी से लेन देन करने की स्वतंत्रता देंगे तो समाज में संपत्ति का कोई खास पैटर्न जैसे बराबरी वो टिक नहीं सकता। उसे बनाए रखने के लिए आपको लगातार लोगों की आजादी में दखल देना पड़ेगा, या तो उनके लेन देन रोको या फिर विल्ट ने जो कमाया उसे टैक्स लगाकर छीन लो।
ये तो सोचने वाली बात है, स्वतंत्रता और समानता में टकराव।
और नॉज़िक इससे भी एक कदम आगे जाते हैं, वो एक और बहुत विवादास्पद बात कहते हैं। वो कहते हैं कि कमाई पर टैक्स लगाकर उसे दूसरों में बांटना वो नैतिक रूप से जबरन श्रम जैसा है।
जबरन श्रम मतलब बिगार?
हाँ, कुछ वैसे ही। उनका तर्क है कि अगर सरकार आपकी मान लीजिए 30% कमाई टैक्स में ले लेती है, तो इसका मतलब है कि आप हफ्ते में जितने घंटे काम करते हैं उसका 30% समय आप सरकार के लिए मुफ्त में काम कर रहे हैं, उन कामों के लिए जो सरकार तय करती है आपकी मर्जी से नहीं। ये आपके समय, आपकी मेहनत, आपके श्रम पर आपके अधिकार का हनन है और इसलिए अन्यायपूर्ण है।
बाप रे, ये तो बहुत बहुत रेडिकल विचार है, टैक्स को इस तरह से देखना।
बिल्कुल, ये हमें टैक्स के नैतिक आधार पर बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।
तो नॉज़िक के हिसाब से न्यूनतम राज्य से आगे बढ़कर पुनर्वितरण करना या समाज को किसी खास पैटर्न में ढालने की कोशिश करना, वो सब व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन है और इसलिए अन्यायपूर्ण है।
ठीक है, तो न्यूनतम राज्य ही नैतिक है और वही काफी है। लेकिन फिर ये भाग 3 यूटोपिया वाला मामला क्या है? न्यूनतम राज्य यूटोपिया कैसे हो सकता है? ये तो बड़ा सूखा सूखा सा लगता है। हाँ, कई लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन नॉज़िक कहते हैं नहीं, यही असली यूटोपिया है। उनका तर्क है कि दुनिया में जीने का कोई एक सबसे अच्छा तरीका तो है नहीं। हम सबकी अलग अलग कल्पनाएं हैं कि आदर्श जीवन कैसा होना चाहिए, आदर्श समाज कैसा हो।
सही बात है, सबकी सोच अलग होती है।
तो न्यूनतम राज्य क्या करता है, वो किसी एक कल्पना को, किसी एक जीवन शैली को सब पर थोपता नहीं है, वो तटस्थ रहता है।
अच्छा,
वो एक यूटोपिया के लिए ढांचा, या कह लीजिए मेटा यूटोपिया प्रदान करता है, एक खाली कैनवस जैसा जिस पर लोग और समूह अपनी मर्जी से, अपने मूल्यों के हिसाब से अलग अलग तरह के समुदाय बना सकते हैं। कोई चाहे तो समाजवादी कम्यून बना ले, कोई धार्मिक आश्रम, कोई पूरी तरह पूंजीवादी एन्क्लेव। जब तक वे दूसरों के अधिकारों का सम्मान करते हैं और किसी को जबरदस्ती शामिल नहीं करते या निकलने से रोकते नहीं, वो आज़ाद हैं।
तो मतलब बहुत सारे छोटे छोटे यूटोपिया एक साथ रह सकते हैं।
बिल्कुल, लोग अपने पैरों से वोट कर सकते हैं, मतलब जिस समुदाय का जीवन दर्शन उन्हें पसंद आए उसमें शामिल हो जाएं, जो पसंद ना आए उसे छोड़ दें। राज्य का काम बस इतना है कि वो इस ढांचे की, इस फ्रेमवर्क की रक्षा करे, सबको अपनी पसंद का जीवन जीने दे। तो ये एक तरह से विविधता और पसंद की आजादी का जश्न है। ये निराशाजनक नहीं बल्कि आशावादी नजरिया है।
ये नजरिया तो वाकई अलग है। तो इस पूरी लंबी विचार यात्रा से कुछ मुख्य संदेश या की टेकअवेज क्या निकलते हैं?
मेरे हिसाब से पहला और सबसे बुनियादी संदेश है, व्यक्तिगत अधिकार परम बाधाएं हैं, इंडिविजुअल राइट्स एज साइड कंस्ट्रेंट्स। मतलब किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन सिर्फ इसलिए नहीं किया जा सकता कि उससे समाज का कोई बड़ा भला हो जाएगा। व्यक्ति अपने आप में साध्य है, साधन नहीं। ये कांट का विचार है जिसे नॉज़िक बहुत गंभीरता से लेते हैं।
हाँ, ये बात बहुत जरूरी है। सोचिए, हमारे यहाँ भारत में भी अक्सर ये बहस होती है, विकास परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण हो या कभी निजता का सवाल हो। नॉज़िक के सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि व्यक्ति के अधिकारों को हम हल्के में नहीं ले सकते, उन्हें एक मजबूत नैतिक बाधा मानना चाहिए।
बिल्कुल। दूसरा बड़ा विचार है आत्मस्वामित्व, सेल्फ ओनरशिप। आप अपने शरीर, अपनी प्रतिभा, अपनी मेहनत और उसका फल यानी आपकी कमाई के मालिक हैं, कोई और नहीं, ना समाज ना सरकार। इसी आधार पर वो पुनर्वितरण वाले टैक्स को जबरन श्रम कहते हैं। ये विचार भारत में उद्यमिता, अपनी मेहनत से आगे बढ़ने की सोच को एक नैतिक बल देता है, है ना?
हाँ, देता तो है। और तीसरा?
तीसरा वो हकदारी का सिद्धांत एंटाइटलमेंट थ्योरी। न्याय इस बात में नहीं है कि किसके पास कितना है, बल्कि इस बात में है कि वो चीज़ हासिल कैसे की गई, क्या प्रक्रिया न्यायपूर्ण थी। ये भारत में जैसे ऐतिहासिक अन्याय हैं, भूमि सुधार या आरक्षण जैसे जटिल मुद्दे हैं, उन पर सोचने का एक बिल्कुल अलग प्रक्रिया केंद्रित नज़रिया देता है, परिणाम के बजाय प्रक्रिया पर जोर।
और चौथा, वो विल चेम्बरलेन वाला सबक।
हाँ, वो यादगार लाइन, स्वतंत्रता पैटर्न बिगाड़ती है, लिबर्टी अपसेट्स पैटर्न्स। ये हमें स्वतंत्रता और परिणाम की समानता के बीच के अनिवार्य तनाव को दिखाता है। इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। भारत में जैसे आर्थिक उदारीकरण के बाद असमानता बढ़ी है, उस बहस में ये विचार बहुत प्रासंगिक है। क्या हम ज्यादा स्वतंत्रता चाहते हैं या ज्यादा समानता? नॉज़िक कहते हैं दोनों एक साथ पूरी तरह हासिल नहीं हो सकते, आपको चुनना पड़ेगा।
और पांचवा, यूटोपिया वाला।
हाँ, यूटोपिया एक बहुलवादी ढांचे के रूप में, यूटोपिया एज अ प्लूरलिस्टिक फ्रेमवर्क। आदर समाज वो नहीं जो सबको एक जैसा बना दे, बल्कि वो जो अलग अलग जीवन शैलियों को एक साथ शांति से फलने फूलने दे। ये भारत की अपनी विविधता, हमारी अनेकता में एकता वाली भावना से कितना मिलता जुलता है ना। न्यूनतम राज्य इसी विविधता का सम्मान और सुरक्षा करता है।
इस किताब में कुछ पंक्तियां या विचार ऐसे हैं जो वाकई दिमाग में अटक जाते हैं।
हाँ बिल्कुल, जैसे किताब की पहली ही लाइन, व्यक्तियों के अधिकार होते हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कोई व्यक्ति या समूह उनके साथ उनके अधिकारों का उल्लंघन किए बिना नहीं कर सकता। ये एक तरह से पूरी किताब का सार है, उसकी नैतिक नींव है।
और फिर उनका मुख्य निष्कर्ष, न्यूनतम राज्य सबसे व्यापक राज्य है जिसे उचित ठहराया जा सकता है। कोई भी अधिक व्यापक राज्य लोगों के अधिकारों का उल्लंघन करता है। ये सीधे सीधे सरकार के आकार और उसकी भूमिका पर एक बहुत बड़ी लक्ष्मण रेखा खींचता है।
और विल्ट चेम्बरलेन तर्क का निचोड़, स्वतंत्रता पैटर्न को बिगाड़ती है। छोटा सा वाक्य पर कितना गहरा। ये स्वतंत्रता और समानता के बीच की दुविधा को सामने लाता है।
और वो सबसे विवादास्पद दावा, श्रम से होने वाली कमाई पर कराधान जबरदस्त श्रम के बराबर है। ये आपको टैक्स भरते समय या टैक्स नीतियों पर बहस सुनते समय सोचने पर जरूर मजबूर करेगा।
अंत में उनका वो सकारात्मक नजरिया, यूटोपिया यूटोपियाओं के लिए एक ढांचा है। ये दिखाता है कि सीमित सरकार का विचार निराशावादी नहीं है, बल्कि ये विविधता और व्यक्तिगत पसंद के लिए अवसरों को खोलने वाला विचार है।
तो क्या इन विचारों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी या हमारे समाज के लिए कोई व्यवहारिक मतलब भी है, या ये सिर्फ ऊंची अकादमिक बातें हैं?
नहीं नहीं बिल्कुल, मतलब है। जैसे सबसे पहले तो ये सरकारी नीतियों को देखने का हमारा नज़रिया बदल सकता है। कोई भी नई योजना आती है, कोई नया टैक्स लगता है, कोई नया नियम बनता है, तो हम नॉज़िक की नज़र से ये सवाल पूछ सकते हैं, क्या ये किसी के अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है? क्या ये लोगों के स्वैच्छिक लेन देन, उनकी मर्जी से किए जाने वाले कामों में बाधा डाल रहा है?
हाँ, जैसे भारत में कोई नई सब्सिडी योजना आती है तो ये सोचना कि इसका पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या वो तरीका यानी टैक्स नॉज़िक के हिसाब से न्यायपूर्ण है, ये एक अलग सवाल खड़ा करता है।
बिल्कुल। फिर व्यापार और अर्थव्यवस्था के लिए भी ये अहम है। ये मुक्त बाजार और मुनाफा कमाने को एक नैतिक आधार देता है, बशर्ते वो धोखाधड़ी या जबरदस्ती से ना हो। ये भारत में उद्यमियों एंटरप्रेन्योर्स को शायद ये कहने का हौसला दे कि वे जो कर रहे हैं वो सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि स्वैच्छिक आदान प्रदान के जरिए समाज की जरूरतें पूरी करना भी है, अगर वो नैतिक तरीके से किया जाए।
व्यक्तिगत नैतिकता पर भी इसका असर हो सकता है। ये हमें याद दिलाता है कि नेक इरादे काफी नहीं है। अगर हमें दूसरों की मदद करनी है तो सबसे अच्छा तरीका स्वैच्छिक दान और सहयोग का है, न कि किसी और की जेब से जबरदस्ती पैसा निकलवा कर मदद करने का। ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर बहुत जोर देता है।
और हाँ, समाज और समुदाय के स्तर पर भी ये दिखाता है कि मजबूत समुदाय सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं बनते। लोग खुद स्वैच्छिक रूप से मिलकर, चाहे वो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हो, सहकारी समितियां हों, धार्मिक या चैरिटी संस्थाएं हों, बहुत कुछ कर सकते हैं और करते भी हैं। भारत में तो ऐसी हजारों पहलें हैं जो दिखाती हैं कि नागरिक समाज कितना महत्वपूर्ण है। नॉज़िक का ढांचा इसी स्वैच्छिक सहयोग को बढ़ावा देता है।
तो इस सब चर्चा के बाद अगर मैं सोचूं तो मेरे लिए सबसे बड़ी सीख या टेक अवे ये है कि नॉज़िक हमें व्यक्तिगत अधिकारों को कितनी गंभीरता से लेने के लिए कहते हैं। अक्सर हम समाज के बड़े लक्ष्य या कॉमन गुड के नाम पर छोटे छोटे अधिकारों की बलि चढ़ा देते हैं या उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। नॉज़िक हमें रोकते हैं और पूछते हैं, क्या ये सच में सही है? अधिकारों को एक बाधा के रूप में देखना ये सोच नहीं है।
और मेरे लिए वो स्वतंत्रता पैटर्न बिगाड़ती है वाली बात बहुत गहरी लगती है। ये स्वतंत्रता और परिणाम की समानता के बीच का जो एक अनिवार्य तनाव है उसे बहुत साफ तौर पर उजागर करती है। इसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। और हाँ, वो यूटोपिया के लिए ढांचा वाला विचार, वो काफी आशावादी और बहुलवादी है। ये एक तरह का भरोसा दिखाता है कि लोग खुद अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं, अलग अलग तरीकों से जी सकते हैं, अगर उन्हें आजादी और सुरक्षा दी जाए।
शायद श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये हो सकती है, हम अक्सर समाज में न्याय या निष्पक्षता को परिणामों से आंकते हैं, किसके पास कितना है, क्या सबको बराबर मिला। नोज़िक हमें प्रक्रिया पर ध्यान देने को कहते हैं, वो चीज हासिल कैसे हुई, क्या तरीका सही था। ये हमारे न्याय के बारे में सोचने के सामान्य तरीकों को कैसे चुनौती देता है। क्या प्रक्रिया ज्यादा महत्वपूर्ण है या परिणाम, इस पर विचार कीजिएगा। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्री फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।